प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरम्भ करें। मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
आइए मित्र, इसी सुंदर संगीत रचना के साथ ही आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को हम आरंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम पुराने नियम से दूसरा शामुएल की पुस्तक का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसके 19वें अध्याय के 16वें पद को आरंभ करेंगे, किंतु इससे पूर्व के हम अपने कार्यक्रम को आरंभ करें अपने मनों की तैयारी और आत्मिक सहायता के लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे महापराक्रमी जीवित और सच्चे परमेश्वर पिताजी, हम बड़ी दीनता के साथ अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपनी महान करुणा से ये सुंदर क्षण हमको प्रदान किए हैं कि हम आपके जीवित और पवित्र वचन का अध्ययन कर सकें। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस वचन को समझने में हमारी सहायता करें और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन को हमें सिखाएं, हमारे लिए वास्तविक बनाएं कि हम इस पर विश्वास कर सकें। यदि हमारे मध्य में कोई श्रोता भाई बहन किसी रोग से पीड़ित है, किसी संकट क्लेश परेशानी में फंसा हुआ है, या निराशा में डूबा हुआ है, या किसी घोर पाप में फंसा हुआ है, प्रभु आप उनका छुटकारा करें, उनकी सहायता करें, हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। हाँ तो मित्र, आइए अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। पिछले बाइबल अध्ययन में हमने पढ़ा कि किस प्रकार दाऊद अपने पुत्र अबशालोम की मृत्यु पर दुखित हुआ तथा किस प्रकार दाऊद को उसके सिंहासन पर पुनर्स्थापित किया गया। अगले वृत्तांत को हम 16वें पद से आगे देखेंगे, सो आइए हमारे साथ देखिए दूसरा शामुएल उसका 19वां अध्याय 16 और 17 पद। इन पदों में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहूदा के पुरुषों के साथ बहुरीम वासी बिन्यामीनी गेरा का पुत्र शिमी भी फुर्ती करके दाऊद राजा से भेंट करने आया। उसके साथ 1000 बिन्यामीनी पुरुष थे, जिनमें शाऊल के घराने का सेवक सीबा भी अपने 15 पुत्रों और 20 सेवकों के साथ था। वे यर्दन पार शीघ्रता से राजा के सामने पहुंचे। मित्र, इन पदों में हम देखते हैं कि राजा दाऊद अब अपने सिंहासन पर है और उसके पास बिन्यामीनी गेरा का पुत्र शिमी भी बड़ी फुर्ती के साथ भेंट करने के लिए आता है। आपको स्मरण होगा कि यह वही शिमी है जो दाऊद को शाप देता है और उसे कोसता है, परंतु अब वह सबसे पहला व्यक्ति है जो दाऊद का राजा के रूप में स्वागत करने के लिए आगे आता है। आज ऐसे अवसरवादी लोगों को आप बड़ी मात्रा में देख सकते हैं, इनकी कमी नहीं है। तब 18 से 21 पदों में हम देखते हैं, यहाँ लिखा है, फिर वे घाट पार करते रहे जिससे कि राजा के घराने को पार उतारें और जो जो काम उसकी दृष्टि में भला लगे वही करते जाएं। परंतु यर्दन पार करने को राजा आगे बढ़ा ही था कि गेरा का पुत्र शिमी उसके चरणों पर आ गिरा और राजा से कहने लगा, मेरा स्वामी मुझे दोषी न ठहराए, न उस गलती को स्मरण करे जो तेरे दास ने उस दिन की जब मेरा स्वामी राजा यरूशलेम से निकला, वह उसे अपने हृदय में रखे ना रहे, क्योंकि मैं तेरा दास जानता हूं कि मैंने पाप किया है। इसीलिए देख, यूसुफ के समस्त घराने में से आज सबसे पहले मैं आया हूं कि अपने स्वामी राजा से भेंट करूं। परंतु सरूया के पुत्र अबीशे ने उत्तर दिया, शिमी ने तो यहोवा के अभिषिक्त को शाप दिया था, क्या इस कारण उसे प्राणदंड ना दिया जाए। मित्रवर, वास्तव में दाऊद एक दयालु व कृपा से भरा नम्र व्यक्ति है जो क्षमा कर सकता है और उसे शिमी को क्षमा दान दिया, जैसा कि 22 पद में हम पढ़ते हैं, तब दाऊद ने कहा, हे सरूया के पुत्रो, मुझे तुमसे क्या काम कि तुम आज मेरे विरोधी हुए हो? क्या इसराइल में आज किसी को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए? क्या मैं नहीं जानता कि आज मैं इसराइल का राजा हूं? फिर राजा ने शिमी से कहा, तू मारा नहीं जाएगा। इस प्रकार राजा ने उससे शपथ खाई। मित्रवर, अगर हम इस पद पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि दाऊद ने शिमी के उस बुरे व्यवहार पर अधिक ध्यान नहीं दिया। वह जानता है कि परमेश्वर ने उसे एक बार पुनः उसका राज्य उसे दे दिया है। वह अब राजा है और दाऊद इस सब से संतुष्ट है। वह जानता है कि उसका स्थान परमेश्वर में क्या है और इस कारण वह शिमी जैसे व्यक्ति के व्यवहार पर ध्यान नहीं देता है। दाऊद ध्यान देता है परमेश्वर के महान कार्य पर जो उसने उसके लिए किया है और शिमी को क्षमा दान प्रदान करता है। उसके क्षमा मांगने पर वह उसे जीवन दान दे देता है। परंतु मित्रवर, आज ऐसे बहुत से मसीही हैं जो छोटी छोटी बातों पर, छोटे व्यक्तियों की बातों के द्वारा परेशान व विचलित हो जाते हैं और परमेश्वर द्वारा उन्हें दिया गया स्थान व आशीषों से अपने ध्यान व दृष्टि को हटा लेते हैं और इस कारण हम परमेश्वर के आनंद व शांति को अपने इस व्यवहार के कारण खो देते हैं और निराश हो जाते हैं। मित्रवर, अगर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो आपका सामना इस प्रकार की परिस्थितियों से होता ही रहेगा। ऐसी परिस्थितियां जो आप में झुंझलाहट को उत्पन्न करती हैं, तो मेरे मित्र, आप उस व्यक्ति व ऐसी परिस्थितियों पर अपना ध्यान ना लगाएं, वरन उन पर से अपना ध्यान हटाकर परमेश्वर की आशीष पर केंद्रित करें। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम इन सब छोटी छोटी बातों में स्वयं को उलझाएं। स्मरण रखें कि परमेश्वर हमारी ओर है, हम उसकी सेवा करें और सभी आवश्यक बातों को भूलकर उनके ऊपर जीवन यापन करें, जिस प्रकार दाऊद ने शिमी को क्षमा दान देकर किया। तब 24वें पद में हम पढ़ते हैं जहां लिखा है, तब शाऊल का पोता मबीबोशेत राजा से भेंट करने आया। उसने राजा के चले जाने के दिन से उसके साकुशल लौट आने के दिन तक न अपने पैरों की परवाह की, न अपनी दाढ़ी बनवाई और न अपने कपड़े धुलवाए। प्रिय मित्र, 24वें पद में हम एक और व्यक्ति का वर्णन पढ़ते हैं और वो भी शिमी के समान शाऊल का वंशज था। इस व्यक्ति का नाम मबीबोशेत है। यह व्यक्ति आरंभ ही से दाऊद के प्रति विश्वास योग्य रहा और उसने किसी भी विद्रोह में भाग नहीं लिया, परंतु पूरे समय जब तक युद्ध चला उसने दाऊद के लिए उपवास के साथ प्रार्थना की। और जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि ना उसने अपने पैरों की परवाह की, ना अपनी दाढ़ी की और ना अपने कपड़ों की, वह प्रार्थना में लगा रहा। वास्तव में इस प्रकार के मित्रों का होना अत्यंत आशीष की बात है। तब आगे हम पढ़ते हैं, और जब वह यरूशलेम के से राजा के पास भेंट करने आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मबीबोशेत, तू मेरे साथ क्यों नहीं गया? उसने उत्तर दिया, हे मेरे स्वामी, हे राजा, मेरे सेवक ने मुझे धोखा दिया। तेरे दास ने तो सोचा था कि मैं एक गधे पर अपने लिए काठी कसवा कर उस पर सवार होकर राजा के साथ जाऊंगा, क्योंकि तेरा दास पंगु है। इसके अतिरिक्त उसने मेरे स्वामी राजा के सामने मुझ तेरे दास की झूठी निंदा की है, परंतु मेरा स्वामी राजा तो परमेश्वर के दूत के समान है, अतः जो तुझे अच्छा लगे वही कर। मेरे पिता का संपूर्ण घराना तो मेरे स्वामी राजा के सामने मृतकों के समान ही था, फिर भी तूने अपने दास को अपनी मेज पर खाने वालों के साथ बैठाया। अब मुझे क्या अधिकार है कि मैं राजा की दुहाई दूं? मित्र, इन पदों में हम इस बात का कारण देखते हैं कि मबीबोशेत क्यों दाऊद के साथ युद्ध पर नहीं गया, परंतु वह युद्ध से अलग भी नहीं हुआ था। वह अपनी विषम परिस्थितियों में भी दाऊद के लिए प्रार्थना व उपवास करता रहा। मित्रवर, हमारे लिए यहाँ पर एक प्रश्न है कि हमारा परमेश्वर के सेवकों के प्रति जो उसकी सेवा के लिए निकल गए हैं क्या कर्तव्य है? क्या हमारी प्रार्थनाएं व उपवास उनके लिए हैं? क्या हम अपने घुटनों को उनके लिए मोड़ते हैं? क्या हम अपने हाथों को प्रार्थना के लिए उनके लिए उठाते हैं? हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि परमेश्वर की सेवा एक आत्मिक युद्ध है जो दुष्ट की शक्तियों के विरुद्ध है। इसलिए हमें उन सेवकों के प्रति जो परमेश्वर के कार्य में लगे हुए हैं प्रार्थना करना चाहिए और उपवास रखना चाहिए। मबीबोशेत ने अपने कर्तव्य को विश्वास योग्यता के साथ निभाया। तब अग्रिम पदों में हम पढ़ते हैं, 31वें पद से आगे देखिए, तब गिलादी बर्जिल्ले भी रोगलीम से आ गया, वह राजा के साथ यर्दन पार गया कि उसको यर्दन के पार पहुंचाए। बर्जिल्ले तो 80 वर्ष का वृद्ध पुरुष था। जब तक राजा महनैम में ठहरा तब तक उसने राजा के लिए भोजन वस्तुओं का पूरा प्रबंध किया, क्योंकि वह बहुत धनी व्यक्ति था। राजा ने बर्जिल्ले से कहा, तू मेरे पास मेरे साथ पार चल, मैं तुझे यरूशलेम में अपने पास रखकर तेरे लिए पूरा प्रबंध करूंगा। पर बर्जिल्ले ने राजा से कहा, अब मेरे जीवन के दिन ही कितने रह गए हैं कि मैं राजा के साथ यरूशलेम जाऊं? मेरे जीवन के 80 वर्ष पूरे हो चुके हैं, चाहे भला हो या बुरा, मेरे लिए क्या अंतर पड़ता है? क्या तेरा दास जो कुछ खाता पीता है उसका स्वाद पहचान सकता है? क्या मैं गायक और गायिकाओं का स्वर सुन सकता हूँ? तेरा दास अब अपने स्वामी राजा पर बोझ ना बने। तेरा दास राजा के साथ यर्दन पार तक ही जाएगा, राजा मुझे इसका ऐसा बड़ा प्रतिफल क्यों दे, मुझे अपने दास को लौट जाने दे कि मैं अपने ही नगर में अपने माता पिता की कब्र के पास मरने पाऊं, फिर भी तेरा दास किम हम यहाँ है मेरे स्वामी राजा के साथ वह पार जाए और जैसा तुझे अच्छा लगे उसके साथ वैसा ही करना। मित्र, यहाँ एक और वृद्ध पुरुष का वर्णन है जिसका नाम गिलादी बर्जिल्ले है। ये व्यक्ति भी दाऊद के साथ यर्दन पार पहुंचता है। इस व्यक्ति ने भी दाऊद का साथ दिया और कठिन परिस्थितियों में उसका साथ नहीं छोड़ा और उसकी सेना को भोजन वस्तुएं पहुंचाई। उसने दाऊद की इस कारण से सहायता की क्योंकि वह जानता था कि दाऊद परमेश्वर का व्यक्ति है और इस प्रकार उसने दाऊद की सहायता करके परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण किया। दाऊद भी उसके इस परोपकार का बदला चुकाना चाहता है, परंतु बर्जिल्ले वापस अपने नगर रोगलीम को लौटने की इच्छा प्रकट करता है क्योंकि वह बहुत ही वृद्ध था और अपने माता पिता की कब्र के साथ ही स्थान प्राप्त करना चाहता है। दाऊद उसे आशीष देकर जाने की आज्ञा दे देता है। मित्रवर, अब तक के अध्ययन में हमने देखा कि दाऊद ने अपने विरोधियों को क्षमादान दिया, परंतु थोड़ा दुख का विषय ये रहा कि दाऊद ने अपने पुत्र को पूर्ण रीति से क्षमा नहीं किया। दाऊद ने अनेक लोगों को उनके पाप उनके अपराधों के लिए क्षमा किया है, किंतु वह अपने पुत्र को क्षमा करने में असफल रहा। अबशालोम ने अम्नून की हत्या की जो उसका भाई था और दाऊद का पुत्र था और भाग गया तथा वह वापस भी आ गया, परंतु दाऊद की ओर से उसे पूर्ण क्षमादान नहीं मिला। अगर दाऊद उसे एक भटके हुए व्यक्ति के रूप में देखकर उसे ग्रहण कर लेता, उसे गले लगाता, उसे क्षमा कर देता, तो मेरा विश्वास है कि दाऊद इस विद्रोह और संकट की परिस्थिति से बच जाता और अपने पुत्र को भी नहीं खोता। आज हमें आवश्यकता है कि हम अपने पुत्रों के साथ अपनी संतान के साथ प्रेम का व्यवहार करें, उन्हें अनुशासित अवश्य करें किंतु कठोरता के साथ नहीं, प्रेम के साथ, ऐसा ना हो कि उनके जीवन नाश हो जाएं। मेरे मित्र, परमेश्वर का वचन निरंतर हमें प्रोत्साहित करता है कि हम उचित जीवन व्यतीत कर सकें। इसी के साथ 19वां अध्याय समाप्त होता है। हम 22वें अध्याय को आरंभ करेंगे। 22वें अध्याय का आरंभ होता है शेबा नामक व्यक्ति के विद्रोह से। सो आइए हमारे साथ देखिए, दाऊद को एक बार फिर विद्रोह का सामना करना पड़ता है और ये विद्रोह बिन्यामीन के गोत्र के शेबा नामक व्यक्ति द्वारा आरंभ होता है। जैसा कि हम अध्ययन कर चुके हैं कि दाऊद के पाप के कारण परमेश्वर ने उससे कहा कि दाऊद के घराने से तलवार कभी अलग ना होने पाएगी और इस कारण दाऊद को एक के बाद एक युद्ध की परिस्थितियों का सामना करते रहना पड़ा। सो आइए पहले पद को देखें, दूसरा शामुएल 20वां अध्याय पहला पद, जहां लिखा है, संयोगवश वहां पर एक ऊंचा व्यक्ति उपस्थित था जिसका नाम शेबा था, जो बिन्यामीनी था और बिक्री का पुत्र था। उसने नरसिंगा फूका और कहा, दाऊद में हमारा कोई भाग नहीं, ना ईशे के पुत्र के साथ हमारी कोई मीरास है। हे इसराइलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। मित्र, इस व्यक्ति को पवित्र बाइबल में ओछा व्यक्ति कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है विद्रोह प्रारंभ करने वाला व्यक्ति। दूसरे पद में हम पढ़ते हैं, अतः इसराइल के सब पुरुष दाऊद के पीछे चलना छोड़कर बिक्री के पुत्र शेबा के पीछे चलने लगे, पर यहूदा के पुरुष यर्दन से यरूशलेम तक अपने राजा के साथ लगे रहे। मेरे मित्र, दूसरे पद में हम देखते हैं कि इसराइल के सब पुरुष दाऊद को छोड़कर बिक्री के पुत्र शेबा के पीछे चलने लगे। अब ये वास्तव में आश्चर्यजनक विषय है कि इसराइल की प्रजा कितनी अविश्वास योग्य है। वो क्षण भर में अपने निर्णय को बदल देती है, क्षण भर में वह किसी को भी छोड़कर किसी के पीछे चलने को तैयार है। हम आरंभ से इनको देख रहे हैं। मिस्र से निकलते समय हमने देखा कि उन्होंने यहोवा परमेश्वर को छोड़कर बाल देवता की उपासना आरंभ कर दी। उसके पश्चात कितनी बार उन्होंने अपने यहोवा परमेश्वर को त्याग दिया, जबकि परमेश्वर ने उनके साथ कैसे कैसे महान कार्य किए। और यहां पर भी हम देखते हैं कि दाऊद की सारी सेवाओं को देखने के पश्चात भी वह एक व्यक्ति के कहने पर दाऊद को छोड़कर उस शेबा नामक व्यक्ति के पीछे चल देते हैं। परंतु मेरा एक प्रश्न है कि क्या इस प्रकार के लोग आज भी नहीं पाए जाते हैं, जिनका हृदय सदैव अस्थिर रहता है? क्या कलीसिया में इस प्रकार के लोग नहीं पाए जाते? आज की वर्तमान स्थिति को हम देखें तो हम पाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी अधिकारी या मंत्री या किसी कलीसिया के अधिकारी के विरोध में कुछ कहता है तो लोग बिना सोच विचार के उसके पीछे हो लेते हैं और उस अधिकारी का विरोध करते हैं। उस समय भी इसी प्रकार के लोग पाए जाते थे। मित्रवर, परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है और इसके विषय में परमेश्वर का वचन यर्मिया नबी उसके 17वें अध्याय के 9वें पद में इस प्रकार से बताता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज होता है और असाध्य रोगों से ग्रस्त है, इसे कौन समझ सकता है। परमेश्वर का वचन मनुष्य के मन के विषय में इस प्रकार से बताता है कि ये सबसे अधिक धोखेबाज है, ये मनुष्य को सबसे अधिक धोखा देता है। क्षण भर में इधर है, क्षण भर में उधर है, क्षण भर में ये परमेश्वर के साथ है, क्षण भर में ये दुष्ट शैतान के साथ है, संसार के साथ है। ये मन ऐसा है जो असाध्य रोग से ग्रस्त है, पीड़ित है और इसे कोई समझ नहीं सकता। इस मन को केवल परमेश्वर ही समझ सकता है, इसलिए इस रोगग्रस्त मन को परमेश्वर ही स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम इस मन को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें। ये पद किसके मन की अथवा किसके हृदय की बात कर रहा है? क्या दूसरों के हृदय की? नहीं मित्र, ये आपका व मेरा हृदय है जिसके विषय में ये पद बता रहा है कि हमारा मन कैसा धोखेबाज, कैसा असाध्य रोग से ग्रस्त मन है। ये ऐसा मन है, इसे कोई समझ नहीं सकता है। मेरे मित्र, प्रत्येक बुरी वस्तु मनुष्य के हृदय से निकलती है और इस कारण इस मन को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तब चौथे पद में हम पढ़ते हैं, फिर राजा ने अमासा से कहा, यहूदा के पुरुषों को 3 दिन के भीतर मेरे पास बुला ला और तू स्वयं यहां उपस्थित रहना। अतः अमासा यहूदा के पुरुषों को बुलाने गया, पर राजा ने जो समय नियुक्त किया था उससे अधिक ठहर गया। तब दाऊद ने अबीशे से कहा, अब बिक्री का पुत्र शेबा तो हमको अबशालोम से अधिक हानि पहुंचाएगा, अतः अपने स्वामी के लोगों को लेकर उसका पीछा कर, कहीं ऐसा ना हो कि वह अपने लिए किलेबंद नगर पाकर हमारी आंखों से ओझल हो जाए। इसलिए जो आपके साथियों ने उसका पीछा किया, करेती पलेती और सब शूरवीर भी उसके साथ चले, वे सब मिलकर बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने को यरूशलेम से निकले। मेरे मित्र, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अमासा जो कार्य उसे सौंपा गया था उसके लिए वह आगे नहीं बढ़ रहा था। जैसा कि इस पद में बताया गया है कि जो समय उसको दिया गया था उस समय पर वो वापस नहीं लौटा, वो उस कार्य को आगे पूरा करने के लिए तैयार नहीं था। और इस कारण योआब को सेना की बागडोर सौंपी जाती है, वह जाए और विद्रोही शेबा का अंत करे। योआब अमासा की भी हत्या कर देता है क्योंकि उसके विचार से वह भी दाऊद का विद्रोही था। तो आइए अग्रिम पदों में देखें जहां लिखा है, इसलिए योआब के साथियों ने उसका पीछा किया। जब वे गिबोन के बड़े पत्थर के पास पहुंचे तो अमासा उनसे मिलने आया। योआब तो सैनिक पोशाक पहने था जिस पर कमरबंद कसा हुआ था और उससे म्यान में रखी एक तलवार बंधी हुई थी। जब वह आगे बढ़ा तो तलवार नीचे गिर पड़ी। तब योआब ने अमासा से कहा, मेरे भाई क्या तू कुशल से है? फिर योआब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर अमासा को चूमने के लिए उसकी दाढ़ी पकड़ी। फिर अमासा उस तलवार के प्रति सतर्क नहीं था जो योआब के हाथ में थी, अतः योआब ने उससे उसके पेट पर वार करके उसकी अतड़ियां भूमि पर फैला दी। उसने दूसरा वार नहीं किया, फिर अमासा मर गया। तब योआब और उसके भाई अबीशे ने बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा किया। योआब का एक जवान उसके पास खड़ा होकर कहने लगा, जो कोई योआब के पक्ष में और दाऊद की ओर है वह योआब के पीछे हो ले। पर अमासा खून से लथपथ मार्ग के बीच में पड़ा था। जब उस व्यक्ति ने देखा कि सब लोग वहां रुक जा रहे हैं, तब उसने अमासा को मार्ग से हटाकर खेत में डाल दिया और उसको वस्त्र से ढक दिया, क्योंकि जो कोई उसके पास आता था उसे देखकर रुक जाता था। जैसे ही वह राजमार्ग से हटा दिया गया, सब लोग बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने के लिए योआब के पीछे चल पड़े। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दाऊद ने अपने शत्रुओं को अपने मार्ग से हटा दिया और उसके वफादार सेनापति योआब ने उसकी सहायता की। प्रिय मित्र, आज भी हमें ऐसे मित्रों की आवश्यकता है जो हमारे साथ विश्वास योग्य हों, क्योंकि परमेश्वर के कार्य में हमको विश्वास योग्य लोगों की आवश्यकता है। परमेश्वर की दृष्टि भी ऐसे ही लोगों पर लगी रहती है कि जो विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की सेवा करें, क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा अपनी सामर्थ को प्रकट करना चाहता है। अब आज के इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को हम इन्हीं वचनों के साथ समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में हम 14वें पद से पुनः इस अध्याय को आरंभ करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दें, प्रभु आपको आशीष दे और आपकी सहायता करे। आमीन।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। प्रिय श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ पहुंचा होगा। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की है और इसके द्वारा आपको आत्मिक आशीष मिली है। यदि आज के कार्यक्रम से संबंधित आपके हृदय में कोई प्रश्न या संदेह है, तो आप हमें इस पते पर अवश्य लिखकर भेजें। इस विषय में हम आपकी पूरी पूरी सहायता करेंगे। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्य वचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।